from the conference center at Temple Square in
Salt Lake City में Temple Square स्थित सम्मेलन केंद्र से ये अंतिम दिनों के संत के यीशु मसीह के गिरजे का 187वां वार्षिक महासम्मेलन का शनिवार दोपहर का सत्र है। इसके वक्ता गिरजे के जनरल अधिकारियों और पदाधिकारियों में से चुने गए हैं। इस सत्र के लिए संगीत ट्रेमेंटन गार्डन और फील्डिंग के स्टेको के सदस्यों की मिलीजुली परिवार गायक मंडली द्वारा उपलब्ध किया गया है। ये प्रसारण बॉनवेल डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा सार्वजनिक सेवा के रूप में किया गया है। बिना लिखित अनुमति के इस कार्यक्रम की नकल रिकॉर्डिंग प्रतिलेखन या अन्य उपयोग वर्जित है। प्रथम अध्यक्षता में प्रथम सलाहकार अध्यक्ष हेनरी बी आयरिंग इस सत्र का संचालन करेंगे।
प्रिय भाइयों और बहनों, हम अंतिम दिनों के संतों के यीशु मसीह के गिरजे के 187वें वार्षिक महासम्मेलन के शनिवार दोपहर बाद के सत्र में आपका स्वागत करते हैं। अध्यक्ष थॉमस मॉन्सन ने, जो कि सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं, ने कहा है कि मैं इस सत्र का संचालन करूं। हम उन सभी को हमारी शुभकामनाएं देते हैं जो यहां उपस्थित हैं या टेलीविजन या रेडियो या इंटरनेट के माध्यम से इसे भाग ले रहे हैं। हम इस प्रकार उनका स्वागत करते हैं जो इन सभाओं के को विश्व के विभिन्न भागों में स्टेक केंद्रों के द्वारा देख रहे हैं। इस सत्र के लिए संगीत ट्रेमेंटन गार्डलैंड और फील्डिंग के स्टेको के सदस्यों के मिली जुली परिवार गायक मंडली द्वारा जेसिका ली गिल्बर्ट के निर्देशन में उपलब्ध किया गया है, बोनी गुडलाइफ ऑर्गन बजाएंगी। गायक मंडली इस सभा का आरंभ होम कैन बी हेवन ऑन अर्थ गाकर करेगी और फिर प्रारंभिक प्रार्थना सत्र के एल्डर वॉन जी किटिच द्वारा दी जाएगी।
Oh. Our Father in heaven,
हमारे स्वर्गीय पिता, हम अपने सरों को आपके आभार में झुकाते हैं। हम आपके पुत्र के लिए आभारी हैं, उनकी सेवकाई के लिए और उनके कामों के लिए, उनके पुनरुत्थान के लिए और उनके प्रायश्चित के लिए। हम बहुत आभारी हैं आज के जीवन में हमारे प्रेरित अपोस्टल्स थॉमस एस मॉन्सन, उनके आज आशीर्वाद दीजिए। हम उन शब्दों के लिए आपके आभारी हैं जो हम पहले ही सुन चुके हैं। हम आपसे चाहते हैं कि हमारे हृदयों को खोलें और उन शब्दों को समझ सकें और उन पर चल सकें। कृपया हमें विशेषकर आशीर्वाद दीजिए ताकि हम यीशु मसीह के समान सेवा में प्रेम करें और हमारे आसपास जो लोग हैं उनको सेवा करें जैसे आपके पुत्र ने हमारी सेवा करी थी। हम यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।
डीटर एफ उक्टोर्फ, द्वितीय सलाहकार, अब गिरजे के पदाधिकारियों और क्षेत्रीय सत्रों के नाम समर्थन मत के लिए प्रस्तुत करेंगे, जिसके बाद गिरजे के ऑडिटिंग विभाग के मैनेजिंग डायरेक्टर केविन आर जर्गेंसन वार्षिक रिपोर्ट पढ़ेंगे। उनके पश्चात प्रथम अध्यक्षता के सचिव ब्रुक पी हेल्स 2016 वर्ष की सांख्यिकीय रिपोर्ट पेश करेंगे।
मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अध्यक्ष मॉन्सन ने कहा है कि अब मैं गिरजे के पदाधिकारियों, क्षेत्रीय सत्रों और जनरल सहायक अध्यक्षताओं को अपने समर्थन मत के लिए प्रस्तुत करूं। ये प्रस्तावित किया जाता है कि हम थॉमस स्पेंसर मॉन्सन का भविष्यवक्ता, दूरदर्शी और प्रकटीकर्ता और अंतिम दिनों के संतों के यीशु मसीह के गिरजे के अध्यक्ष के रूप में, हेनरी बेनियनायरिंग का प्रथम अध्यक्षता में प्रथम सलाहकार के रूप में और डीटर फ्रेडरिक उक्टोर्फ का प्रथम अध्यक्षता में द्वितीय सलाहकार के रूप में समर्थन करते हैं। जो पक्ष में है इसे प्रकट करें, जो विरोध करते हैं यदि कोई है तो प्रकट करें। यह प्रस्तावित किया जाता है कि हम रसल एम नेल्सन का 12 प्रेरितों की परिषद के अध्यक्ष के रूप में और अन्यों को परिषद के सदस्यों के रूप में समर्थन करें। रसल एम नेल्सन, डालिने चोक्स, एम रसल बैलर्ड, रॉबर्ट डी हेल्स, जेफरी और हॉलैंड, डेविड ए बैडनर, क्विंटिन एल कुक, डी टॉड क्रिस्टोफरसन, नील एल एंडरसन, रॉनल ए रैसबन, कैरी ई स्टीवेंसन और टेल जी रेनलन। जो पक्ष में है कृपया प्रकट करें, कोई विरोध हो तो प्रकट करें। यह प्रस्तावित किया जाता है कि हम प्रथम अध्यक्षता के सलाहकारों और 12 प्रेरितों की परिषद का भविष्यवक्ताओं, दूरदर्शियों और प्रकटीकर्ताओं के रूप में समर्थन करते हैं। जो समर्थन करते हैं प्रकट करें, विरोध यदि कोई हो इसके द्वारा प्रकट करें। हम अपने मित्र और साथी एल्डर ब्रूस रिपोर्टर, जिनका निधन 28 दिसंबर 2016 को हुआ था, की सेवा को ध्यान में रखते हैं। हम बहन सुजन पोर्टर और उनके बच्चों और नाती पोतों के प्रति अपनी प्रेम और संवेदनाएं प्रकट करते हैं। हम इस भले व्यक्ति के साथ सेवा करने के धन्यवादी हैं। यह प्रस्तावित किया जाता है कि हम टेलर जी गोडॉय और जॉन सी पिंगरी जूनियर को क्षेत्रीय सत्तर के रूप में सेवानिवृत्त करते हैं। वे जो इन भाइयों की सेवा के लिए आभार व्यक्त करना चाहते हैं कृपया प्रकट करें। ये प्रस्तावित किया जाता है कि हम आभार प्रकट करते हुए बहन लैंड के बर्टन, कैरल एम स्टीफन्स और लिंडा एस रीव्स को सहायता संस्था की महाअध्यक्षता से सेवानिवृत्त करते हैं। इस प्रकार हम सहायता संस्था की महासमिति के सदस्यों को भी सेवानिवृत्त करते हैं। वे सब जो इन बहनों की उत्तम सेवाओं और निष्ठा के प्रति का आभार प्रकट करने में हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं, कृपया इसे प्रकट करें। यह प्रस्तावित किया जाता है कि हम सिस्टर जीन बी को सेवा
and Sister Bonnie H. Corden as second counselor in the primary general presidency. Those who wish to extend appreciation to these sisters may do so.
वे जो इन बहनों के प्रति प्रोत्साहन प्रकट करना चाहते हैं हाथ उठाकर प्रकट करें। यह प्रस्तावित किया जाता है कि हम निम्न जनरल पदाधिकारियों 70 का समर्थन करें।
Taylor G. Godoy, Sony L. Koch, Adulson de Paula Parheya, John C. Pingree, Brian K. Taylor, and Taniela B. Vaccolo. All in favor, please manifest this.
जो समर्थन में हैं, कृपया इसे प्रकट करें। जो विरोध करते हैं, समान चिन्ह से प्रकट करें। ये प्रस्तावित किया जाता है कि हम नए क्षेत्रीय समर्थनों को
Sharon L. Eubank as first counselor and Reina E. Abuto as second counselor. It is further proposed that we sustain Bonnie H. Corden to now serve as first counselor in the primary general presidency and Christina B. Franco to serve as second counselor in the primary general presidency. All in favor, please manifest it. Any opposed may so indicate. It is proposed that we sustain.
ये प्रस्तावित किया जाता है कि हम निम्न नए क्षेत्रीय सत्रों का समर्थन करें। लुइस आर आरबीसू, डेविड ए बिनाल कसार, बर्न एस ब्रॉडबेंट, डेविड एल बकनर, L. Todd Budge, Luciano Cascardi, Ting Sung Chang, Pablo H. Chavez, Raymond A. Cutler, Fernando P. Del Carpio, Jose Luis Del Guerso, Alexander A. Tracchio, E. Raymond Egbo, Carlos R. Fusco, Jr., George A. Garcia, Carrie F. Gessel, Guillermo I. Guardia, Marcel K. Jose Hernandez, Carl T. Hurst, Rain S. Johnson, J. B. Jones, Anthony M. Kaku, Paul N. Lekias, John A. McHugh, Thomas S. Matigia, Arthur J. Miranda, Ellie K. Monga, John C. Pozo, Anthony Quizzi, James R. Rasman, Carlos G. Ruilo, Jr., Martin C. Reyes, Johnny F. Ruiz, K. Roy Tunicliffe, or Moises Vulenua. जो समर्थन करते हैं प्रकट करें। कोई विरोध हो तो प्रकट करें। यह प्रस्तावित किया जाता है कि हम वर्तमान में गठित अन्य जनरल पदाधिकारियों, क्षेत्रीय सत्रों और जनरल सहायक अध्यक्षताओं का समर्थन करें। सब जो समर्थन करते हैं कृपया प्रकट करें। जो विरोध करते हैं प्रकट करें। मतदान को वोट नोट कर लिया गया है। जिन्होंने किसी भी प्रस्ताव का विरोध किया है वे अपने स्टेक अध्यक्षों से संपर्क करें। भाइयों और बहनों, गिरजे के मार्गदर्शकों के प्रति आपके निरंतर विश्वास और प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। अब हम नए जनरल अधिकारी सत्रों और नई सहायता संस्था महाअध्यक्षता को मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने का निमंत्रण देते हैं। सूचना के रूप में
प्रेसिडेंट मॉन्सन ऑलवेज सेज इट्स अ लॉन्ग वॉक।
सन कहते हैं ये हमेशा एक लंबी यात्रा होती है। सूचना के रूप में बहन अभी अपने पति के साथ मिशन पर सेवा कर रही है और जुलाई में वापस लौटने पर आधिकारिक रूप से अपनी सेवा आरंभ करेंगे। जैसे घोषणा की गई थी, केविन आर जर्गेंसन गिरजे की ऑडिट रिपोर्ट पढ़ेंगे। इसके पश्चात ब्रूक पी हिल्स गिरजे की 2016 की सांख्यिकीय विवरण पेश करेंगे।
To the first presidency of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, dear brethren, as directed by Revelation in section 120.
प्रिय भाइयों, सिद्धांत और अनुबंध 120 अध्याय के निर्देशन द्वारा प्रकटीकरण दिया गया था। Council on the Deposition of the Theses, प्रथम अध्यक्षता 12 प्रेरितों की परिषद से और धर्मशास्त्र के अंतर्गत गिरजाघर कोष का अधिकारी खर्च के द्वारा बनाया गया है। गिरजाघर संस्था कोष का विवरण बजट स्वीकृति नीतियां और कार्यविधि के अनुसार है। गिरजाघर ऑडिटिंग विभाग, जिसको अनुभवी व्यवसायों और सारे अन्य गिरजाघर के विभागों से स्वतंत्र बनाया गया है कि ऑडिटिंग करने की जिम्मेदारी है। योगदान प्रदान करने संबंध खर्च किए गए और गिरजाघर के सुरक्षा कर्मी संबंधी के उचित उद्देश्य के काम अवशासन प्रदान करते हैं। ऑडिटिंग का काम गिरजाघर ऑडिटिंग विभाग का मशवरा है कि सारी सामग्री योगदान प्राप्त खर्च हुए और 2016 का गिरजाघर के लिए संपत्ति का लेखा गया है और प्रशासन अनुशासन की स्वीकृति गिरजाघर का बजट नीतियां और हिसाब लेखन करना का अभ्यास करना है। गिरजा इसे सदस्यों के बजट के अंदर जीना है। प्रथम अध्यक्षता के नाम निम्न दिसंबर 31 2016 को प्रतिगत से संबंध और गिरजे के स्तर की संख्या रिपोर्ट की पेश की है। वर्ष के अंत में कुल स्टेक की संख्या 266,421 मिशन के साथ 556 जिलाएं और 30,304 वार्ड और शाखाएं हैं। कुल गिरजे की सदस्य 15,88,02,417 थी। नए बच्चों की संख्या रिकॉर्ड में 2016 में 10,09,246 वर्ष के दौरान 2,04,431 में परिवर्तन के साथ जुड़े थे, जिससे कि दिसंबर 31 के यहां पर 7,946 पूरे समय के मिशनरी और 43,696 गिरजे के सेवा प्रचार गिरजा में सेविकाएं की है। छह मंदिर में 2016 में प्रोवोस सिटी विंटर स्वप्नो जापान फिलिपीनिया
धन्यवाद भाइयों। गायक मंडली अब आई एम ए चाइल्ड ऑफ गॉड और हाउ विल दे नो गीत गाएगी मेडले के रूप में। गाने के पश्चात हम 12 प्रेरितों के परिषद के एल्डर रॉबर्ट डी हिल्स और जेफरी आर हॉलैंड को सुनेंगे।
How will they know the ones for whom we care that God is one? What does it mean to be a disciple of our Lord Jesus Christ?
हमारे प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बनना.
And is willing to take upon him or her the name of the Savior and follow him. A disciple strives to become as he is by keeping his commandments in mortality, much the same as an apprentice seeks to become like his master. Many people hear the word disciple.
बहुत से लोग शिष्य शब्द सुनते हैं और सोचते हैं इसका अर्थ केवल अनुयायी होता है, लेकिन सच्ची शिष्यता होना एक अवस्था है. इसका मतलब किसी के व्यक्तिगत गुणों की सूची का अध्ययन और अमल करने से अधिक होता है. शिष्य जीते हैं ताकि मसीह के गुणों को इस प्रकार से उनके स्वभाव में बुना जाता है, जैसे आत्मिक कढ़ाई में धागे और कपड़ा से. उद्धारकर्ता के समान बनने के लिए प्रेरित पौलुस के निमंत्रण को सुने. सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ. जैसा कि आप देख सकते हैं, व्यक्तिगत शिष्यता के आत्मिक कढ़ाई को बुनने के लिए एक से अधिक धागों की अधिक आवश्यकता होती है. उद्धारकर्ता के समय में बहुत से ऐसे लोग भी थे जो अपने जीवन की एक या अन्य तरीके से धार्मिक दोनों का दावा करते थे. उन्होंने अभ्यास किया, जिसमें चुनकर आज्ञाकारिता कहता हूँ. उद्धारकर्ता के उदाहरण के लिए उन्होंने शब्द पर काम न करने की आज्ञा का पालन किया, फिर भी पवित्र दिन चंगाई देने के लिए उद्धारकर्ता की आलोचना की थी. वे गरीब को दान देते थे, लेकिन अपने बहुतायत में जिसकी उन्हें जरूरत नहीं होती थी. वे उपवास रखते थे, लेकिन उदास चेहरों के साथ. वे प्रार्थना करते थे, लेकिन केवल लोगों को दिखाने के लिए. यीशु ने कहा था, वे अपने होठों से मेरे निकट हैं, लेकिन उनके हृदय मुझसे दूर. इस प्रकार के स्त्री और पुरुष विशेष गुण या कार्य में निपुण होने पर केंद्रित रहते हैं, लेकिन वे अपने हृदयों में अपने समान नहीं बनते हैं. उनके बारे में यीशु कहता है, उस दिन बहुतरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना. हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ. उद्धारकर्ता के गुण जब हम इन्हें ग्रहण करते हैं, कोई उल्लेख नहीं है जिसे पढ़कर अनुकरण किया जाए या कोई सूची की सही का निशान लगाया जाए. ये आपस में बुने हुए गुण हैं, एक दूसरे का साथ मिले हुए हैं, जो हमारे भीतर एक दूसरे पर प्रभाव डालकर विकसित होते हैं. अन्य शब्दों में, जब तक हम मसीह के समान एक गुण को प्राप्त नहीं करते, तब तक हम दूसरे को प्राप्त और प्रभावित नहीं कर सकते. जब एक गुण मजबूत होता है, तो बहुत से अन्य भी होते हैं. सेकंड पत्रस और सिद्धांत और अनुबंध खंड 4 में हम सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में विश्वास मूल आधार है. हम अपने विश्वास को अपनी आज्ञाकारिता के द्वारा नापते हैं, जो यह हमें करने के लिए प्रभावित करता है. यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे, प्रभु वादा करता है, तो तुम्हें उस काम को करने की सामर्थ्य मिलेगी जो मुझसे उचित है. विश्वास के उत्प्रेरक हैं. बिना कार्य के, बिना नैतिक जीवन जीने के, हमारा विश्वास शिष्यता और सक्रिय करने के लिए शक्तिहीन है. आवश्यक ही विश्वास मृत है. और इसलिए पत्र समझाता है, अपने विश्वास में नैतिकता जोड़ो. यह नैतिकता मात्र यौन रूप से शुद्ध होने से अधिक है. यह मन और शरीर में स्वच्छता और पवित्रता है. नैतिकता शक्ति भी है. जब हम विश्वासहीनता से सुसमाचार में जीते हैं, हमारे पास प्रत्येक विचार, अनुभूति और कार्य में नैतिक होने की शक्ति होगी. हमारे मन पवित्र आत्मा और मसीह के प्रकाश के परिणामों को स्वीकार करने के योग्य बन जाते हैं. हम न केवल जो कहते हैं करते हैं, बल्कि हम कौन हैं उसमें मसीह को सम्मिलित करते हैं. पत्रस आगे कहता है, अपने गुण से ज्ञान जोड़ें। जब हम गुणी जीवन जीते हैं तो हम हमारे स्वर्ग पिता और उसके पुत्र को विशेष तरीके से जानते हैं। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा। यह ज्ञान व्यक्तिगत गवाही है जो व्यक्तिगत अनुभव से पैदा हुई। यह एक ऐसी समझ है जो हमें बदल देती है ताकि हमारा गुण से उनके गुण को प्रेम करता है। ज्योति उसकी ज्योति से जुड़ती है। हमारे गुणी जीवन जीने के द्वारा हम में विश्वास करता हूँ से महिमापूर्ण मंजिल मैं जानता हूँ तक पहुँचती है। पत्रस हमें समझ पर संयम और संयम पर धीरज जोड़ने का उपदेश देता है। संयमी शिष्यों के रूप में हम सुसमाचार को संतुलित और स्थायी तरह से जीते हैं। हम अपने शक्ति से अधिक तेज गति से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। दिन प्रतिदिन हमें आगे बढ़ते हैं नश्वर की संशोधित चुनौतियों द्वारा अड़िग रहते हुए। इस तरह संयमी होने से हम प्रभु में धीरज और भरोसा विकसित करते हैं। हम अपने जीवनों के लिए उसकी परिकल्पना पर भरोसा करने के योग्य होते हैं। यद्यपि हम इसे अपनी प्राकृतिक आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए हम ढाढ़स रखते हैं और जानते हैं कि वह परमेश्वर है। जब हम कठिनाइयों के तूफान का सामना करते हैं, हम पूछते हैं, इस अनुभव से आप हमें क्या सिखाना चाहते हैं? अपने हृदय में उसी योजना और उद्देश्यों के साथ हम न केवल आगे बढ़ते हैं बल्कि इन्हें धैर्य और भली भांति सहते हैं। यह धैर्य पत्रस सिखाता है, हमें धार्मिकता की ओर ले जाता है। जब पिता अपने बच्चों के साथ धैर्य रखता है, उसके बच्चे हम एक दूसरे के साथ धैर्य रखते हैं। हम अन्यों की स्वतंत्रता में सुखी होते हैं और उन्हें पंक्ति दर पंक्ति उस संपूर्ण दिन तक उन्नति करने का अवसर देती हैं। संयम से धीरज और धीरज से धार्मिकता, हमारी प्रकृति बदलती है। हम भाई बंधु की तरह दया प्राप्त करते हैं। यही सच्चे शिष्यों का प्रमाण है। एक अच्छे सामरी की तरह हम जिस किसी को सेवा की जरूरत होती है उनकी खोज में निकल पड़ते हैं, बेशक वे कोई भी हो। हम अपने बैरियों से प्रेम रखते हैं और अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करते हैं। क्या कोई इससे अधिक ईश्वर या मसीह समान हो सकता है? मैं गवाही देता हूँ कि जो प्रयास हम अपने उद्धारकर्ता के समान बनने के लिए करते हैं वास्तव में जुड़ते जाते हैं जब तक उनके प्रेम को प्राप्त नहीं कर लेते। यह प्रेम मसीह के शिष्य को परिभाषित करने वाला गुण है। यदि मैं मनुष्य और स्वर्ग दूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यह विश्वास आशा और प्रेम है जो हमें परमेश्वर के कार्य के योग्य बनाते हैं। पर अब ये तीनों स्थाई हैं, पर इनमें से सबसे बड़ा प्रेम है। भाइयों और बहनों, पहले से अधिक हम कुछ समय शिष्य नहीं हो सकते। हम किसी सिद्धांत के मात्र एक बिंदु के शिष्य नहीं हो सकते। गुणों का नतीजा जो मसीह में विश्वास करने उन सबों के सहित जिनकी आज हमने यहाँ चर्चा की है, इन अंतिम दिनों में हमारे मजबूती से खड़े रहने के लिए आवश्यक हैं। जब हम ईमानदारी से यीशु मसीह के सच्चे शिष्य बनने का प्रयास करते हैं, यह गुण एक दूसरे से मिलकर परस्पर प्रभाव डालते हुए हमें मजबूती प्रदान करते हैं करेंगे। अपने शत्रुओं को दिखाई गई दयालुता और अपने मित्रों को प्रदान की गई दयालुता के बीच कोई असमानता नहीं होगी। चाहे हमें कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, हम एक समान ईमानदार रहेंगे। हम परमेश्वर के हमेशा निष्ठावान रहेंगे, चाहे हम सार्वजनिक चौराहे पर हों या अपने निजी घरों में। मैं गवाही देता हूं कि हर कोई उद्धारकर्ता का शिष्य हो सकता है। शिष्यता आयु, लिंग या जाति तक सीमित नहीं होती। अपनी व्यक्तिगत शिष्यता के माध्यम से हम अंतिम दिनों के संतों के रूप में हम विश्व भर में अपने भाइयों और बहनों को आशीषित करने के लिए सामूहिक ताकत का निर्माण करते हैं। अब फिर से उस शिष्य होने के परिश्रम से अपने आप को प्रतिबंध करने का समय है। भाइयों और बहनों, हम सभी को हमारे उद्धारकर्ता के शिष्य नियुक्त करने के लिए बुलाए गए हैं। यह सम्मेलन आपको प्राचीन समय की तरह प्रभु के पास अपने पूरे हृदय से आने का अवसर प्रदान करता है। यह उसका गिरजा है। मैं उसकी विशेष गवाही देता हूँ कि वह जीवित है। वह हमें हमारी अनंत खोज में निष्ठावान और साहसी शिष्य बनाने की आशीषित देता है, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
Surely it must have been a day
like having in Salt Lake City. Yeah, aaj vishesh din raha hoga ki hum Salt Lake City mein aaj Elizabeth Hillard बहुत सालों पहले उन्होंने कहा था आज मेरे सूर्य में आत्मा की जगह आज सूरज बहुत ही चमकीला हो सकता है जो कि ये जीजस क्योंकि जीजस ही हमारी रोशनी है।
I wish to lift out of context just one.
लेकिन आज मैं इसमें से अप्रासंगिक एक पंक्ति को हटाना चाहता हूं, जो उन दिनों में मदद कर सकती है जब हमारे लिए इसे गाना मुश्किल या मुस्कुराना कठिन होता है और शांतिपूर्ण खुशी के क्षण लगता नहीं आते हैं। यदि कुछ समय के लिए आप उन आनंदपूर्ण सुरों को नहीं गा सकते हैं जो आप दूसरों से सुनते हैं, तो मैं आपसे इस गीत के एक पंक्ति को मजबूती थामे रहने के लिए कहता हूं, जो यकीन दिलाती है यीशु उस गीत को सुन सकता है जो आप गा नहीं सकते। इस पतित संसार में परमेश्वर की संतान के रूप में हम सच्चाइयों के बीच सामना करते हैं कि कुछ दिन कठिन होते हैं, कुछ दिन जब हमारे विश्वास और हमारे साहस की परीक्षा ली जाती है। यह चुनौतियां हमारी कमी, दूसरों की कमी या मात्र जीवन में कमी के कारण आ सकती हैं। लेकिन कारण कुछ भी हो, हम पाते हैं ये हम से उस गीतों को चुरा लेती है जो हम सबसे ज्यादा गाना चाहते हैं और आत्मा की बाहर और अंधकार में कर देता है, जिसकी इलाइजा ह्यूट उनकी एक पंक्ति में प्रशंसा करते हैं। तो ऐसा समय में क्या करते हैं? एक बात के लिए हम प्रेरित पॉलिस की सलाह मानते हैं और उसकी आशा रखते हैं कि हम नहीं देखते और धीरज से उसकी बात भी जोते हैं। उन क्षणों में जब हमारा आनंद इतना कम हो जाता है कि हम इसे बिल्कुल व्यक्त नहीं कर पाते हैं, हमें कुछ समय के लिए शांत होना पड़ता है और केवल को दूसरों को सुनते हमारे आसपास के शानदार संगीत से शक्ति लेते हुए हमारे बीच वे जो विश्वास को मजबूत करने में संघर्ष करते हैं, उन्होंने हमारे विश्वास को सहारा दिया है और हमारे गाने में अत्यधिक सुधार हुआ है। उनके साथ रहकर जो अधिक मजबूत हैं, अधिक स्पष्ट वाणी है, आवश्यक ही यह आत्मिकता की बातों पर भी लागू होता है। हमारे लिए जीवन जितना संभव हो सकता है संसार को उदारकर्ता और मुक्तिदाता के उतने निकट रहना चाहिए जिसका सुर परिपूर्ण है। फिर भी हम उसकी योग्यता से उत्साहित होते हैं और जो हमारे मनों की बात जानता है और पिता से हमारे पक्ष के उद्धार के लिए उसकी विनम्र माध्यमता से आशा प्राप्त कर सकते हैं। सच में यह तब हो सकता है जब प्रभु इतना निकट हो कि उसकी शांति की अनुभूति मेरे हृदय में होगी और अनुग्रह के प्रतिफल प्रकट हो गए हैं। उन दिनों जब किसी भी कारण से आप महसूस करते हैं कि आपका सुर उससे कम है जो आप अन्य में देखते हैं या सुनते हैं, उससे थोड़ा भिन्न है। मैं आपसे कहता हूँ, विशेषकर गिरजा के युवाओं से याद रखें कि गायन मंडली में कम से कम दो बड़े फायदे हैं। एक है कि दिव्य रचना के द्वारा कोई भी दो आवाजें एक नहीं हो सकती हैं, इनको अलग अलग होना होता है। पतली और मोटी, मध्यम और भारी आवाजों में से सुरीला संगीत बनता है। दो असाधारण अंतिम दिनों की संत महिलाओं के प्रचारण से एक पंक्ति में से परमेश्वर की सभी लोगों के लिए गायन मंडल के साथ स्थान है। जब हम अपने अनूठेपन को महत्व नहीं देते या काल्पनिक रूढ़िवाद से तुलना करते हैं, रूढ़िवाद जो कि उपभोक्ता संस्कृति से प्रेरित होता है, और सामाजिक मीडिया द्वारा संचालित आदर्श जो कि वास्तविकता से पूरा होता है, हम लोगों की विविधता और विभिन्नता को खो देते हैं, जिसकी रचना परमेश्वर ने विविधता के इरादे से की थी। इसका मतलब यह नहीं है कि इस दिव्य कोरस पे हर कोई अपना अपना भजन गा सकता है। विविधता का अर्थ अपनी मर्जी से गाना नहीं होता है, और गायन मंडली के अनुसार अनुशासन होता है। आज के हमारे उद्देश्य के लिए मैं कहूँगा शिष्यता, लेकिन एक बार जब हम दिव्य रूप से प्रकट गीत के बोल और संगीत के को स्वीकार कर लेते हैं, जिन्हें संसार की रचना से पहले बनाया गया था, हमारा स्वर्गीय पिता हमें अपनी स्वयं की आवाज में खुशी से गाने देता है, किसी अन्य की नहीं। स्वर पर विश्वास रखें और अपने पर विश्वास रखें। अपनी योग्यता का मान कम ना करें या अपने सहयोग का कम ना समझें। सबसे खास कोरस में आपकी भूमिका से पीछे ना हटें, क्योंकि आप बेजोड़ हैं और कोई आपका स्थान नहीं ले सकता। हमारी इस महान नश्वर गायन मंडली में मात्र एक गायक जिन्हें लगता है कि वे समाज के हसीये या गिरजे के हसीये पर हैं। जब मैं संसार की अस्थिरता के बढ़ रही आर्थिक असमानता को देखता हूं, तो श्रीमती हेविट के साथ गीत, जिनकी आशीष परमेश्वर मुझे अभी देता है उन आनंदों के लिए जो ऊपर रखे गए हैं, गानों में मैं स्वयं को दोषी महसूस करता हूं। यह कोरस सही माने में पूर्ण रूप से विश्वास पूर्वक नहीं गाया जा सकता है जब तक हम गरीब की देखभाल ना करें, यह सुनिश्चित ना करें कि हमें आसपास कोई भी भूखा ना सोए या ठंड में ठिठुर ना रहे या भयभीत ना हो। आर्थिक तंगी में ऐसा श्राप है जो साल दर साल और पीढ़ी दर पीढ़ी शापित करती रहती है। यह शरीर नुकसान पहुंचाती है, आत्मा को नष्ट करती है, परिवारों को हानि पहुंचाती है और सपनों को भी नाश करती है। यदि आप गरीब से ऊपर उठने की कुछ मदद करते हैं, जो यीशु ने निरंतर अपने करने की आज्ञा दी है, जो हो सकता है संसार के कम भाग्यशाली लोग थोड़ी बहुत खुशी और आनंद महसूस कर सकते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि हम परमेश्वर के इन संतानों को चुपचाप दुख नहीं सहने देंगे, जिनसे हम उन गीत को सुनने और उनकी समता से संपन्न होने की ये गा सकते हैं। और मैं आशा करता हूं कि एक दिन दुनिया के भर के लोग सभी धर्म, जाति या धर्म की परवाह किए बिना एक साथ मिलकर काम करेंगे, घोषणा कर दें कि बंदूकें और आपातजनक टिप्पणियां मानव विवाद को हल करने का तरीका नहीं है। संपूर्ण इतिहास में स्वर्ग और घोषणाएं हम से कहती हैं कि जटिल सामाजिक विषयों को संतोषजनक ढंग से हल करने का एकमात्र तरीका परमेश्वर से प्रेम करना और उसकी आज्ञाओं का पालन करना है, जिससे एक दूसरे और अपने पड़ोसी के समान प्रेम रखने के बचाने की मजबूत भावना बनाती है। भविष्यवक्ता ईथर ने सिखाया था कि हमें बेहतर संसार की आशा रखनी चाहिए। हजार वर्ष बाद एक विचार को पढ़ने के बाद युद्ध और हिंसा से थके हुए मरोनी ने घोषणा की थी कि संसार के पास अति उत्तम तरीका यीशु मसीह का सुसमाचार ही रहेगा। हम बहुत आभारी हैं कि इस प्रकार की चुनौतियों के बीच समय समय पर एक अलग तरह का गीत आता है जिसे गाने में हम अपने आप को असमर्थ पाते हैं, लेकिन एक भिन्न कारण से यहाँ तक हो सकता है कि अनुभूतियाँ बहुत गहरी और व्यक्तिगत होती हैं, इतनी पवित्र होती हैं कि वो या तो व्यक्त नहीं कर सकते या इन्हें व्यक्त नहीं किया जाना चाहिए। जैसे आपने पिता से के प्रति कोरोडोलिया का प्रेम, जिसने बारे में उसने बताया था कि मेरी प्रेम मेरी जुबान से मधुर है, मैं अपने दिल को अपने मुंह में नहीं ला सकती। हमारे पास कुछ पवित्र रूप के अति ये अनुभूतियां बिल्कुल बयान करने से है, आत्मिक रूप से अनकही हैं। नफाई के संतान के लिए यीशु की प्रार्थना के समान वे यह घटना के गवाह थे जिसे लिखा गया था, आंखों ने ना देखा ना तो कभी देखा ना ही कभी कानों ने सुना होगा, ना कि किसी भी जुबान इस तरह बोल सकती है, ना ही इसे किसी मनुष्य द्वारा लिखा जा सकता है, ना ही इस तरह की महान और अद्भुत चीजें कोई अपने मन में सोच सकता है, और कि हमें यीशु को देखते और बोलते सुना है। इस तरह के पवित्र क्षण भव्य अभिव्यक्ति के कारण अनकहे रह जाते हैं। यदि यह संभव नहीं हो सकता तो अभी अपवित्र नहीं लग सकते हैं। भाइयों और बहनों, हम ऐसे संसार में रहते हैं जिनमें बहुत से गीत हम गा नहीं सकते हैं या अभी नहीं गा सकते हैं, लेकिन मैं निवेदन करता हूं कि हम में से प्रत्येक गायक मंडली में हमेशा और विश्वसनीय रूप से बना रहेगा। जब हम अपने अनमोल गीत का हमेशा स्वाद लेने के योग्य होंगे, मुक्ति दिलाने वाला प्रेम गीत, सौभाग्य से इस विशेष गीत के लिए जगह असीमित है। उनके लिए जगह तो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, विविध संस्कृतियों का समारोह मानते हैं और बहुत से स्थानों में रहते हैं। उनके लिए जगह जो अविवाहित विवाहित बड़े परिवार और बिना बच्चे के हैं, उन सब के लिए जगह जिनके पास कभी अपने विश्वास के संबंध में प्रश्न थे, और उनके लिए भी जगह है, उनके पास अभी भी प्रश्न है। अलग अलग यौन आकर्षण रखने वाले लोगों के लिए जगह है। संक्षिप्त में उन सभी के लिए जगह है जो परमेश्वर से प्रेम और उनकी आज्ञाओं का व्यक्तिगत व्यवहार के लिए दंड देने के पवित्र छड़ी के रूप में सम्मान करते हैं, क्योंकि यदि परमेश्वर का प्रेम हमारे साझे गीत की धुन है तो निश्चित रूप से उसका आज्ञाकारी होना के लिए हमारी सामान्य खोज से अनिवार्यता है। प्रेम और विश्वास, पश्चाताप और करुणा, ईमानदारी और क्षमा की दिव्य आज्ञाओं के साथ इस गायक मंडली ने उन सब के लिए जगह है जो इनमें शामिल होना चाहते हैं। आओ, तुम जैसे भी हो, हमारा प्रेमी पिता हम सबको कहता है, लेकिन वह आगे कहता है, तुम जैसे हो वैसे बने रहने की योजना ना बनाना। हम मुस्कुराते हुए याद करते हैं कि वह हम उससे अधिक बनने के लिए दृढ़ है जो हम अपने लिए हैं। इस महान भजन के अर्थ और हमारे अक्षर उत्कर्ष के लिए हमें योजना में हम विनम्रता से उनकी छड़ी का अनुसरण करते और उन गीतों का परिश्रम करते हैं जो नहीं आते हैं, अभी नहीं गाते हैं। जब हम इन प्रश्न गीतों का अपने राजा को भेंट करेंगे, फिर एक दिन, जैसा हमारा अति प्रिय गीत कहा जाता है, हम स्वर्ग लोगों के साथ गाएंगे और पुकारेंगे। जब यीशु अपने अग्निरथ के साथ उतरेगा, मैं गवाही देता हूं कि वह दिन आएगा जब परमेश्वर हमारे अनंत पिता एक बार फिर अकेले पुत्र पृथ्वी पर भेजेंगे। इस बार राजाओं के राज के रूप में हमेशा के लिए राज और शासन करने के लिए मैं गवाही देता हूं कि वह पुनर्स्थापित गिरजा है और संपूर्ण मानव जाति के लिए उनके सुसमाचार की बचाने वाली विविधताओं को लाने का माध्यम है। जब यह कार्य संपन्न हो जाएगा और यीशु अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाएगा, उस दिन अवश्य ही आत्मा के लिए बहुतायत से सूर्य का प्रकाश होगा। इस वादा किए गए समय के आने के लिए मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ।
The congregation will now join the choir in singing, Go Forth with Faith. After the singing, we will hear from Elders Gary B. Sabin and Valerie V. Cordon of the 70. They will be followed by Elder Neil L. Anderson.
अब कलीसिया और गायक मंडली एक साथ खड़े होकर Go Forth with Faith गाएगी। संगीत के पश्चात हम 70 के Elder Gary B. Sabin, Valerie V. Cordon को सुनेंगे। उनके पश्चात नील एंडरसन को सुनेंगे।
दिस इज द 187th एनुअल जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट।
अंतिम दिनों के संतों के यीशु मसीह गिरजे का 187th वार्षिक महासम्मेलन है।
Several years ago, our young granddaughter ran up to me and excitedly announced, Grandpa, Grandpa, I scored all three goals at my soccer game today. I enthusiastically replied, That's great, Sarah. Her mother then looked at me with a twinkle in her eye and said, The score was 2-1. I didn't dare ask who would win.
मैंने पूछने का साहस नहीं किया कि कौन जीता। सम्मेलन प्रतिबिंब प्रकटीकरण और कभी कभी पुनर्निर्देशन का समय है। जीपीएस सिस्टम के साथ एक कार किराए पर देने वाली कंपनी का नाम कभी नहीं खोया है। यदि आप एक गलत मोड़ लेते हैं अपनी इच्छा के स्थान को डालने के बाद, मार्गदर्शन देती आवाज यह नहीं कहती आप बेवकूफ हैं, किंतु अपेक्षाकृत बड़ी ही मधुर आवाज में बोलेगी मार्ग की पुनर्गणना जब मुमकिन हो या नियमानुकूल यू टर्न लें। एजिकल में हम यह उत्तरण वादा पढ़ते हैं, परंतु दुष्ट जन अपने आप पापों से फिरकर मेरी सब विधियों का पालन करें और न्याय और धर्म के काम करें तो वह ना मरेगा वरना जीवित ही रहेगा। उसने जितने अपराध किए हैं उनमें से किसी का स्मरण उसके विरुद्ध ना किया जाएगा। कितना भव्य वादा है, परंतु ये दो सभी की अपेक्षा रखता है तीसरे का वादा प्राप्त करने के लिए। सबसे मुड़े सब रखें, तब सब माफ होगा। इनमें सबका होना आवश्यक है। हम उस व्यक्ति की तरह नहीं होना चाहिए जिसने, जैसे कि वॉल स्ट्रीट जर्नल में रिपोर्ट किया था, एक लिफाफा पैसे से भरा गुमनाम पत्र के साथ इंटरनल रेवेन्यू सर्विस को भेजा जिसमें लिखा था, प्रिय IRS, कृपया बंद किए इस लिफाफे में वह पैसे हैं जिन्हें मुझे पहले से टैक्स की ओर देने हैं। देखें, यदि इसके बाद मेरी अंतरात्मा मुझे कष्ट देती है तो मैं आपको बाकी की भेज दूंगा। हम ऐसा नहीं करते, हम उसमें देखने के बाद पीछे नहीं पड़ते जिसमें हम न्यूनतम देकर निकल जाएं। प्रभु मन और एक शुद्ध दिमाग चाहता है हमारा पूरा हृदय। जब हमारा बपतिस्मा होता है हम पूर्ण रूप से एक चिन्ह के तरह उस वादे में डूबे होते हैं जो उद्धारकर्ता का पूरा अनुसरण करने के लिए होता है। जब हम पूरी तरह समर्पित होते हैं और पूर्ण रूप से स्वर्ग हमारे लिए हिल जाते हैं। कई वर्ष पूर्व मैं स्काउट को कैंप आउट पर रेगिस्तान में लेकर गया। लड़के इस बड़ी आग के पास सो गए जिन्होंने खुद बनाई थी, और एक आधे स्काउट अध्यक्ष की तरह मैं अपने ट्रक के पीछे सो गया। सवेरे जब मैं उसके पास बैठा कैंप के स्थान की ओर देखा, मैंने स्काउट को देखा जिसमें बॉल कहूंगा जो विशेष रूप से किनारों के चारों का असभ्य दिखा। मैंने उससे पूछा कि वह कैसे सोया था, उसने उत्तर दिया अच्छी तरह से नहीं। मैंने पूछा उसने क्या कहा, मुझे ठंड लगी आग बुझ गई थी। मैंने उत्तर दिया सही आग ऐसा करती है, क्या तुम्हारा सोने का बैग काफी गर्म नहीं था, कोई जवाब नहीं। फिर एक स्काउट चिल्लाकर स्वेच्छा से कहा उसने सोने का बैग इस्तेमाल नहीं किया था। मैंने नासिकता से पूछा क्यों नहीं पॉल, खामोशी फिर आखिरकार भेड़ जैसा जवाब। खैर मैंने सोचा कि यदि मैं अपने सोने का बैग नहीं खोलता तो मुझे इस बार और बांधना नहीं होगा। सच्ची कहानी, वह घंटों तक टूटता रहा क्योंकि वह 5 मिनट का काम बचाना चाहता था। हम सोचेंगे कितनी मूर्खता, कभी ऐसा कौन करेगा। खैर हम ऐसा हर समय करते हैं बहुत से खतरनाक तरीकों से। हम उस प्रभाव में हैं, अपने आत्मिक सोने के बैग को खोलने से इनकार करते हैं। जब हम निष्ठा से प्रार्थना पढ़ने और हर बार सुसमाचार में गंभीरता पर जीने का निष्कर्ष नहीं निकालते, न केवल आग चली जाएगी परंतु हम आत्मिक तौर से असुरक्षित और ठंडे भी पड़ जाएंगे। जब अपने अनुबंधों के साथ आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं हम उसके परिणाम के साथ भी सप्रहद हो जाते हैं। प्रभु ने हमें सलाह दी है कि हम अपने विषय में सावधान रहें, अनंत जीवन के शब्दों की को सतत से ध्यान दें, और उन्होंने आगे घोषणा की मेरा रक्त उन्हें माफ नहीं करेगा क्योंकि वह नहीं सुनेंगे। वास्तविकता में पूर्ण होना अधिक आसान है आंशिक रूप की अपेक्षा। जब मानसिक रूप से या पूर्ण रूप से उसमें नहीं होते तो वह तारों की देशी भाषा में एक शक्ति में शांति होती है। हम परमेश्वर की इच्छा के मेल से बाहर होते हैं और इसलिए प्रसन्नता के स्वभाव के मेल से बाहर। यशाशस ने कहा परंतु दुष्ट ही लहराते समुद्र के समान है जो स्थिर नहीं रह सकता और उसका जल मैल और कीच उछालता है। दुष्टों के लिए शांति नहीं है, मेरे परमेश्वर का यही वचन है। सौभाग्य से इसकी परवाह किए बिना ही हमें कहा हम कहाँ हैं, हम कहाँ थे। हम उद्धारकर्ता की पहुंच से बाहर नहीं है जिन्होंने कहा इसने जो भी कोई पश्चाताप करेगा और मेरे पास एक बच्चे के समान होकर आएगा उसे मैं स्वीकार करूंगा, क्योंकि परमेश्वर का राज ऐसे लोगों का है। देखो ऐसे ही लोगों के लिए मैंने अपना जीवन दिया और फिर से वापस ले लिया। जैसे हम निरंतर पश्चाताप करते हैं और प्रभु पर निर्भर होते हैं हमें शक्ति मिलती है। जैसे एक छोटे बच्चे के विनम्रता और विश्वास की तरह हम उस पूरे परिक्रमण में हो जाते हैं समृद्ध उस बुद्धिमानी के साथ जो जीवन के अनुभव के साथ पैदा हुआ था। अय्यूब ने घोषणा की तो मैं भी धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़ेंगे और शुद्ध काम करने वाले सामर्थ्य पर सामर्थ्य पाते जाएंगे। वह टेनिसन था जिसने लिखा था मेरी शक्ति 10 की शक्ति है क्योंकि मेरा हृदय शुद्ध है। प्रभु ने सलाह दी है पवित्र स्थानों पर खड़े रहो और हिलो मत। हमारा पुत्र जस्टिन 19 वर्ष की उम्र में एक आजीवन बीमारी से संघर्ष करते हुए चला गया। एक प्रभु भोज की सभा में उसने अपने जाने से कुछ समय पहले बोला था। उसने एक कहानी बताई थी जो कि उसे समझ आई होगी, एक पिता और उसके युवा पुत्र के बारे में, जो एक खिलौने की दुकान में गए जहाँ पर एक हवा वाला मुक्के मारने वाला बाघ पुरुष के आकार में था। लड़के ने हवा वाले व्यक्ति को घूसा मारा, जो एकदम से पलटा और फिर घूसे के साथ अपनी जगह आ गया। पिता ने अपने युवा बेटे से पूछा कि व्यक्ति बाप क्यों पलटता है। लड़के ने एक मिनट के साथ सोचा और फिर उत्तर दिया, मैं नहीं जानता, मेरे ख्याल से क्योंकि वह इसके अंदर खड़ा है। पूर्ण रूप से अंदर होने के लिए हमें अंदर खड़ा होना आवश्यक है, चाहे कुछ भी आ जाए। हम अंदर तब खड़े होते हैं जब हम प्रभु का इंतजार धैर्य से अपने मांस के कांटे हटाने या हमें अंत तक उसे सहने की शक्ति देते हैं। ऐसे कांटे बीमारी, अयोग्यता, मानसिक रोग, किसी प्रियजनी की मृत्यु और कई दूसरे मामले। हम अंदर तब खड़े होते हैं जब हम उन हाथों को खड़ा करते हैं जो नीचे ओर झूलते हैं। हम अंदर तब खड़े होते हैं जब हम सच का समर्थन बुरे से देते हैं और धर्म से संबंध ना रखने वाला संसार, जो अधिकतर ज्योति से असुकत होता जा रहा है, बुरे को अच्छा या अच्छे को बुरा कहना और धार्मिक की उन धार्मिकता का निंदा करना। खड़े होना मुश्किलों के बावजूद संभव है क्योंकि पवित्र आत्मा द्वारा वृद्धि और सांत्वना देने वाला भरोसा एक अनंत शक्ति जो कि नश्वरता की समझ से अधिक है। हमारे यहाँ के जीवन से पहले के जीवन में हम आनंद से इस जीवन के अनुभव को अवसर के लिए चिल्लाए थे। समय आ गया है कि हम खड़े हों और उनकी योजना का फिर से समर्थन करें। मेरे 90 वर्षीय पिता का हाल में देहांत हो गया था। जब भी कोई उनसे पूछता था कि वे कैसे हैं, उनका एक ही जवाब होता था, 1 से 10 के पैमाने पर मैं 25 हूँ। और तब भी जब वे प्रिय अपनी खड़े या बैठ नहीं पाए और बोलने में काफी तकलीफ होने लगी, तब भी उनका उत्तर वही था, वह हमेशा अंदर खड़े रहे। जब नेवी में द्वितीय युद्ध में थे तो उस बड़ी और चौड़ी इमारत में ऐसे थे जो उसकी सिद्धांतों का मजाक उड़ाया करते थे। उनके 2 जहाज के साथी
or just let some things go so we can hang on to those things that really matter. We may need to let go of the world so we can hang on to eternity. My father understood this. When he was in the Navy during World War II, there were those in the great...
जब वे नेवी में द्वितीय युद्ध में थे तो उस समय कुछ बड़ी और चौड़ी इमारत में ऐसे थे जो उनके सिद्धांतों का मजाक उड़ाया करते थे। उनके 2 जहाज के साथी डॉली मेडॉक्स और डॉन डेविडसन ने यह देखा कि ऐसा नहीं किया। उन्होंने पूछा, साबिन तुम सबसे अलग क्यों हैं? आपका उच्च सदाचरण और ना पीना, धूम्रपान, झूठ बोलना, परंतु आपका शांत और खुश लगना। उनके पिता के बारे में सकारात्मक प्रभाव उनसे मेल नहीं खाता था जो उन्हें मॉर्मन्स के बारे में सिखाया गया था, और मेरे पिता उन दोनों जहाज के साथियों को पढ़ा सके या उनको बपतिस्मा दिया। जब युद्ध समाप्त हो गया तो अक्सर हेबरजी ग्रांड ने
Dale's parents said he would lose if he joined the church. They eventually had 9 children, 3 boys and 6 girls. All 9 served missions, followed by Dale.
सबने मिशन सर्व किया।
Dozens of grandchildren have also served.
दर्जनों पोते पोतों ने सेवा की। उनके 2 पुत्र जॉन और मैथ्यू मेडॉक्स टैबरनिकल मंडली के सदस्य हैं, जैसे कि मैथ्यू के दामाद रायन भी।
Maddox's family now numbers 144 are a great examples of all in.
मेरे पिता के कुछ कागजों को पढ़ते हुए हमें एक पत्र जेनिफर रिचर्ड से आया मिला, जहाज के एक साथी की 5 पुत्रों में से एक का जॉन डॉन डेविडसन। उसने लिखा, आपकी अच्छाइयों ने हमारे जीवन को बदल दिया। यह सम्मिलित करना मुश्किल होगा कि हमारा जीवन गिरजा के बिना कैसा होता। मेरे पिता की मृत्यु सुसमाचार से प्रेम रखते हुए और आखिर सांस तक जीते हुए। इसके प्रभाव का अच्छा उस हर व्यक्ति पर मापना मुश्किल है जो अंदर खड़ा हो सकता है। मेरे पिता और उनके 2 जहाज के साथियों ने उनके सुनने का इनकार किया जो बड़ी और चौड़ी इमारत से तिरस्कार की उंगली का इशारा कर रहे थे। वे जानते थे कि रचयिता का अनुयाय बनना अच्छा है भीड़ की अपेक्षा। प्रेरित पौलुस ने अपना हमारे दिन का विवरण तिमोथी के कुछ ऐसा बताया होगा, कितने लोग फिरकर बकवाद की ओर बढ़ गए हैं। आज संसार में बहुत से वेट के झगड़े चल रहे हैं। यह परिवर्तन है उनका जो बड़ी और चौड़ी इमारत में है। कई बार समीकरण के उस रूप जैसा प्रतीत होता है जो बुराई को उचित ठहराता है या खुद को व्यक्त करता है। जब लोग अपना मार्ग खो देखते हैं और बढ़ते हैं, कभी कभी उत्तर आता है पूर्णता के अंदर। आने के लिए कोई मूल्य नहीं दिया गया और प्राकृतिक मनुष्य का न्याय बनने को चुना भविष्यवक्ता के विपक्ष। कृतज्ञता से हम जानते हैं विश्वसनीय के लिए अंत कैसा होता है। जब हम इसमें पूर्ण रूप से होते हैं, हमें पूर्ण व्यापक आश्वासन होता है कि सब चीजें इकट्ठे होकर उनके लिए अच्छा काम करती हैं जो ईश्वर से प्रेम करते हैं। मेरे ससुर बीवायू में पढ़ाते थे और बीवायू के फुटबॉल से उन्हें प्रेम था, परंतु कभी उनके खेल को देखकर नहीं पाते थे क्योंकि वे परिणाम से घबराते थे। फिर एक बढ़िया चीज हुई, VCR का आविष्कार हुआ जिसने रिकॉर्ड किए हुए खेलों का देखना संभव किया। यदि बीवायू जीत जाता तो वे रिकॉर्डिंग पूरी आत्मविश्वास के साथ देखते पूर्ण रूप से अंत तक। यदि वे गलत तरीके से दंडित होते, घायल या चौथे पहर में पीछे से देर होती, वे चिंता नहीं करते क्योंकि उन्हें पता होता कि वे इसे खींच लेंगे। आप कह सकते हैं कि उन्हें आशा की परिपूर्ण चमक थी। तो यह हमारे साथ है, जैसे कि हम विश्वसनीय हैं, हमारे पास बराबर निश्चितता है कि हमारे अंत में चीजें अच्छी तरह काम करेंगी। प्रभु के वादे पक्के हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आसान होगा या बहुत से आंसुओं के बिना होगा, किंतु जैसा पॉलस ने लिखा है, जो आंख ने कभी नहीं देखा और कान ने कभी नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के मन में नहीं चढ़ी, जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। भाइयों और बहनों, किसी ने भी कल पाप नहीं किया। हम कोई आवश्यक कार्य प्रणाली सुधार कर सके और बहुत आशा और विश्वास से आगे बढ़ें। हम बहादुरी से अंदर खड़े हो सके और पूर्ण हो सके। हम अपने स्वर्गीय पिता की योजना, उसके पुत्र का मिशन, हमारे उद्धारकर्ता का समर्थन करने में शुद्ध और वीर हो सके। यह मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह के पवित्र। आमीन।
जनरल अधिकारी नियुक्ति होने के बाद मैं संयुक्त राज्य में अपने पहले कार्यभार के लिए अपने परिवार सहित कोस्टा रिका से सॉल्ट लेक सिटी पहुंच गया था। विभिन्न अधिक धार्मिक और संस्कृतियों के शानदार लोगों से भेंट करने में मैं आश्चर्य हुआ था। उनमें से बहुत से जो मेरे सामने लैटिन अमेरिकी देशों में पैदा हुए हैं। मैंने ध्यान दिया है कि बहुत से लैतानी प्रथम पीढ़ी के लोग अपनी मुख्य भाषा के तौर पर स्पेनी और दूसरों से बातचीत करने के लिए अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। दूसरी पीढ़ी जो या तो संयुक्त राज्य पैदा हुए थी या छोटी आयु में आए और विद्यालय में आए थे, बहुत अच्छी अंग्रेजी और शायद टूटी फूटी स्पेनी बोलते थे, और अक्सर तीसरी पीढ़ी तक उनके पूर्वजों की मूल भाषा स्पेनी खो जाती है। भाषा संदर्भ में इसे सामान्य रूप से भाषा विलुपित कहते हैं। भाषा विलुपित तब होती है जब परिवार ऐसे देश में जाते हैं जहां उनकी मूल भाषा प्रमुख नहीं है। यह केवल लतीनी के बीच नहीं है, लेकिन संसार भर में लोगों के बीच ऐसा होता है जहां नई भाषा मूल भाषा का स्थान ले लेती है। नफी भी मॉर्मन की पुस्तक भविष्यवक्ता अपने पूर्वजों की मूल भाषा के संबंध में चिंतित था जब वह प्रतिज्ञा के प्रदेश में जाने की तैयारी कर रहा था। नफी लिखता है, देखो यह परमेश्वर का विवेक है कि हम इन अभिलेखों को प्राप्त करेंगे जिससे कि हम अपने पूर्वजों की भाषा को अपने बच्चों के लिए सुरक्षित रखें। लेकिन नफी दूसरी प्रकार की भाषा के खोने से भी चिंतित था। अगली आयात में वह आगे लिखता है और कि हम उनके लिए उन वचनों को भी सुरक्षित रखें जो कि पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुंह से कहे गए थे, जो कि उन्हें परमेश्वर की आत्मा और सामर्थ्य द्वारा संसार के आरंभ से लेकर वर्तमान समय तक दिए जाते हैं। मैंने हमारे जीवनों में मृत भाषा को सुरक्षित रखने और यीशु मसीह के समाचार को सुरक्षित रखने के बीच समानता देखी है। आज अपने उदाहरण में मैं पृथ्वी की किसी विशेष भाषा पर नहीं बल्कि अनंत भाषा पर जोर डालूंगा, जिसे अवश्य ही हमें अपने परिवारों में सुरक्षित रखा जाना और कभी विलुप्त नहीं होने देना चाहिए। मैं यीशु मसीह के सुसमाचार की भाषा के विषय में बोलूंगा। सुसमाचार की भाषा से मेरा अर्थ हमारे भविष्यवक्ता की सभी शिक्षाएं, उन शिक्षाओं के प्रति हमारी आज्ञाकारिता और धार्मिक परंपराओं का हमारा अनुसरण है। मैं तीन तरीकों की चर्चा करूंगा जिससे इस भाषा को सुरक्षित रखा जा सकता है।
these language can be preserved. First,
पहला, घर में अधिक परिश्रमी और चिंताशील रहना। सिद्धांत और अनुबंध में प्रभु ने न्यूक्वेल के विटनी सहित गिरजे के बहुत से मुख्य सदस्यों को अपने घरों को अनुशासित करने का नियंत्रण दिया था। प्रभु ने कहा था, मेरे सेवक न्यूक्वेल के विटनी को भी फटकारे जाने और अपने घर को अनुशासित किए जाने की जरूरत है और निश्चित करें कि वे घर में अधिक परिश्रमी और जिम्मेदारियों को निभाए और हमारे परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, हम वरना उन्हें उनके स्थान से हटा दिया जाएगा। एक कारण जो भाषा विलुपित को प्रभावित करता है, जब माता पिता अपने बच्चों को उनकी मूल भाषा सिखाने में समय व्यतीत नहीं करते हैं। घर में केवल मूल भाषा को बोलना ही काफी नहीं है। यदि माता पिता अपनी भाषा को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इसे सिखाया जाना चाहिए। जांच से पता चलता है, जो माता पिता अपनी मूल भाषा को सुरक्षित रखने के लिए सतर्क प्रयास करते हैं, वे ऐसा करने में सफल रहते हैं। तो सुसमाचार की भाषा को सुरक्षित रखने से सतर्क प्राप्त कर होंगे। 12 प्रेरितों की परिषद के सदस्य एल्डर डेविड ए बेडनार ने सावधान किया था कि घर में कमजोर सुसमाचार शिक्षा और उदाहरण प्रभावशाली कारण है जो गिरजे में बहुपीढ़ी परिवारों के चक्र को तोड़ सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे घरों में सुसमाचार को सुरक्षित रखने के लिए प्रभावशाली शिक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इसके लिए परिश्रम और प्रयास की जरूरत होती है। बहुत बार हमें प्रतिदिन पारिवारिक और व्यक्तिगत धर्मशास्त्र अध्ययन करने की आदत बनने के लिए कहा जाता है। बहुत से परिवार जो ऐसा कर रहे हैं, वे प्रतिदिन अधिक से अधिक एकता और प्रभु के साथ नजदीकी संबंध बनाने से आशीषित होते हैं। प्रतिदिन धर्मशास्त्र अध्ययन कब होगा? यह तब होगा जब माता पिता धर्मशास्त्रों को हाथ में लेंगे और प्यार से परिवार को मिलकर अध्ययन करने का नियंत्रण देंगे। किसी अन्य तरीके से ऐसे अध्ययन का होना कठिन है। पिताओं और माताओं, इन महान आशीषों को मत गवाओ। समय हाथ से निकल जाने की प्रतीक्षा मत करो। दूसरा, घर में बहुत मजबूत उदाहरण बनना। भाषा के एक विशेषज्ञ ने लिखा था कि मूल भाषा को सुरक्षित रखने के लिए आपको अपने बच्चों के लिए भाषा को जीवित रखने की जरूरत है। हम भाषा को जीवित करते हैं जब हमारी शिक्षा और उदाहरण मिलकर कार्य करते हैं। जब मैं युवा था, मैं छुट्टी के दौरान अपने पिता की फैक्ट्री में काम कर रहा था। जब मैं अपना वेतन लेता था तो सबसे पहले मेरे पिता मुझसे पूछते थे, तुम इन पैसों से क्या करोगे? मैं जवाब जानता था और उत्तर देता था, अपना दशमांश दूंगा और अपने मिशन के लिए बचाऊंगा। लगभग 8 वर्षों तक कार्य करने और निरंतर वही प्रश्न पूछे जाने के बाद मेरे पिता ने सोचा था कि उन्होंने मुझे दशमांश देना सिखा दिया था। उन्हें यह एहसास नहीं हुआ था कि मैंने इस महत्वपूर्ण सिद्धांत को केवल एक सप्ताहांत में सीखा था। मध्य अमेरिका में गृह युद्ध से संबंधित कुछ घटनाओं के बाद मेरे पिता का व्यवसाय बंद हो गया था। उनके पास 200 पूर्णकालिक कर्मचारियों से घटकर 5 से भी कम सिलाई कारीगरी रह गए थे, जो आवश्यकता होने हमारे घर की गैराज में काम करते थे। एक दिन उन कठिन समय के दौरान मैंने अपने माता पिता को चर्चा करते हुए सुना कि उन्हें दशमांश देना चाहिए, बच्चों के भोजन खरीदना चाहिए। परिवार को मैं अपने पिता से संग देखने गया था कि वह क्या करते हैं। गिरजे की हमारी सभाओं के बाद मैंने उन्हें लिफाफा लेते और उनमें अपना दशमांश डालते देखा था। यह सबक का केवल एक हिस्सा था। प्रश्न जो मेरे लिए अभी भी बाकी था कि हम खाएंगे क्या। सोमवार सुबह कुछ लोगों ने हमारा दरवाजा खटखटाया। जब मैंने इसे खोला तो उन्होंने मुझसे मेरे पिता के बारे में पूछा। मैंने उन्हें बुलाया और जब वे आए तो लोगों ने उन्हें एक बहुत जरूरी सिलाई के ऑर्डर के बारे में बोला कि उन्हें जल्दी से पूरा करना है। उन्होंने पिता को बताया कि यह ऑर्डर इतना जरूरी है कि वे इसके पैसे पहले दे देंगे। उस दिन मैंने दशमांश देने और उसके बाद मिलने वाली आशीषों के सिद्धांतों को सीखा था। नए नियम में प्रभु उदाहरण होने के विषय में कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ पुत्र, आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। बच्चों से मंदिर विवाह, उपवास और सप्त दिन को पवित्र रखने के महत्व के विषय में बोलना ही काफी नहीं है। उन्हें हमारी दिनचर्या में नियमित रूप से मंदिर जाने को स्थान देते हुए देखना चाहिए। उन्हें नियमित रूप से उपवास और संपूर्ण सप्त दिन को पवित्र रखने की हमारी निष्ठा को देखना चाहिए। यदि हमारे युवा दो भोजन का उपवास नहीं रख सकते, नियमित रूप से धर्मशास्त्र का अध्ययन नहीं कर सकते और रविवार को लोकप्रिय खेल ना खेल देखने के लिए टीवी बंद नहीं कर सकते, तो क्या उनके पास आज के संसार की शक्तिशाली चुनौतियों जैसे अश्लील चित्र देखने और विरोध करने का आत्म अनुशासन होगा? तीसरा, परंपराएं। एक अन्य तरीका जिससे भाषा बदल या विलुप्त हो सकती है, जब अन्य भाषाएं और परंपराएं मातृ भाषा के साथ मिल जाती है। पुनर्स्थापित गिरजे के आरंभिक वर्षों में प्रभु ने गिरजे के मुख्य सदस्यों को उनके घरों को अनुशासित करने का निमंत्रण दिया था। प्रभु ने अपना निमंत्रण दो बातों को ध्यान में रखते हुए कहा था, जिससे हम घरों में ज्योति और सच्चाई खोद देते हैं और वह दुष्ट आता है और ज्योति और सच्चाई को दूर ले जाता है। अवज्ञाकारिता के द्वारा मनुष्य के संतान से और उनके पूर्वजों को परंपराओं के कारण परिवारों के रूप में हमें ऐसी किसी भी परंपरा से बचना चाहिए जो हमें सप्त के दिन को पवित्र रखने या घर में प्रतिदिन धर्मशास्त्र अध्ययन और प्रार्थना करने से रोके। हमें अपने घरों के डिजिटल दरवाजों को अश्लील चित्रों और अन्य सभी बुरी बातों के लिए बंद रखना चाहिए। हमें हमारे समय की संसारिक परंपराओं का सामना करने के लिए हमें अपने बच्चों को उनकी दिव्य पहचान, जीवन में उनके उद्देश्य और यीशु मसीह के दिव्य मिशन के बारे में सीखने के लिए धर्मशास्त्र और हमारे वर्तमान भविष्यवक्ताओं की वर्णियों का उपयोग करने की जरूरत है। धर्मशास्त्र में हमें भाषा विलुप्ति के बहुत से उदाहरण मिलते हैं। उदाहरण के लिए, अब ऐसा हुआ कि बहुत सी उभरती पीढ़ियां थी जो आज बिन्यामिन की बातों को समझ नहीं पाई थी, क्योंकि जब उसने अपने लोगों से बातें की थी तब वे छोटे बच्चे थे और अपने पिताओं की परंपराओं पर विश्वास नहीं करते थे, और अब अपने अविश्वास के कारण वे परमेश्वर के वचन को समझ नहीं सके थे और उनके हृदय कठोर हो गए थे। उभरती पीढ़ी के लिए सुसमाचार एक अजनबी भाषा बन गया था, और जबकि मूल भाषा के लाभों को बनाना रखना कभी कभी विवादित हो सकता है, लेकिन उद्धार के योजना के संदर्भ में इसमें कोई विवाद नहीं है। हमारे घरों में सुसमाचार की भाषा खोने के अनंत परिणाम होंगे। परमेश्वर के बच्चों के तौर पर हम अपूर्ण लोग हैं जो परिपूर्ण भाषा सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चों के प्रति सहनशील रहती है, उसी प्रकार हमारा भविष्य स्वर्ग के पिता भी हमारी अपूर्णता और गलतियों के प्रति धैर्यमान है। वह हमारी मामूली सी प्रार्थना पर ध्यान देता है, समझता है जिसे हम ईमानदारी से करते हैं, मानो वे एक उत्तम कविता हो। वह हमारे प्रथम सुसमाचार शब्दों की ध्वनि से आनंदित होता है। वह हमें परिपूर्ण प्रेम से सिखाता है। इस जीवन में किसी भी उपलब्धि, बेशक किसी भी महत्वपूर्ण हो, या कोई अर्थ नहीं है यदि हम अपने परिवार में सुसमाचार की भाषा खो देते हैं। यह मेरी गवाही है कि स्वर्ग के पिता हमें हमारे प्रयासों में आशीषित देंगे। जब हम अपनी उसकी भाषा को अपने के प्रयास करते हैं, जब तक हम व्यवहार के इस उच्चतर स्तर में सहज नहीं हो सकते हैं जो कि हमेशा से हमारी मातृभाषा थी। यीशु मसीह के नाम में आमीन।
Many years ago, President David O. McKay
कई वर्ष पूर्व अध्यक्ष डेविड ओ मक्के ने एक मधुर अनुभव के विषय में बताया, जिसमें वह सीमाओं की ओर एक नाव में यात्रा कर रहे थे। सोने के बाद उन्होंने एक दिव्य दर्शन देखा, कुछ अत्यंत प्रभावशाली। कुछ दूरी पर उन्होंने कहा, मैंने एक सुंदर सफेद शहर को देखा। पेड़ों पर स्वादिष्ट फल और हर जगह फूल परिपूर्णता में खिले हुए थे। लोगों का एक बड़ा झुंड आते दिखा। हर एक ने एक सफेद प्रवाहित लबादा पहना हुआ था। तुरंत मेरा ध्यान उनके अध्यक्ष पर केंद्रित हुआ और हालांकि मैं केवल उनकी बाहरी रेखा की विशेषता ही देख पाया, मैंने तुरंत उन्हें अपने उद्धारकर्ता के रूप में पहचाना। उनके चेहरे की चमक तेज थी, उनकी शांति दिव्य थी। अध्यक्ष मक्के ने निरंतर कहा, वह शहर उनका था, अनंत शहर, और जो लोग उनका अनुसरण कर रहे थे वे शांति और प्रसन्नता के साथ रहना था। अध्यक्ष मक्के ने सोचा, ये कौन है, ये लोग कौन है? जैसे कि उद्धारकर्ता मेरे विचारों को पढ़ रहे थे, उन्होंने उत्तर दिया अद्रव्य की ओर इशारा करते हुए, जो उनके ऊपर प्रकट हुआ स्वर्ण में लिखे हुए हैं। ये वे हैं जिन्होंने संसार पर विजय प्राप्त की है, जो सच में फिर से फिदा हुए। सदियों में से मैंने ये शब्दों को याद रखा, ये वे हैं जिन्होंने संसार पर विजय प्राप्त की है। जो संसार पर विजय पाएंगे उनको प्रभु ने लुभावनी आशीषों का वादा किया है। वह सफेद वस्त्रों में होंगे और जीवन की पुस्तक में नामांकित होंगे। प्रभु पिता के सामने और उनके स्वर्ग दूतों के सामने स्वीकार करेंगे और उनमें से हर एक का भाग पहले पुनरुत्थान में होगा। अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति से फिर बाहर नहीं जाएंगे। क्या संसार पर विजय पाना संभव है और इन आशीषों को प्राप्त करना है? हाँ है। जो संसार पर विजय पाते हैं वे हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के लिए एक सम्मिलित प्रेम विकसित करते हैं। हम सभी के पुनरुत्थान का आश्वासन करके दिव्य जन्म, उनके परिपूर्ण जीवन, उनके गेथमेसमन और गोलगोथा में अनंत बलिदान से हैं। वह अकेले ही योग्य हैं। पश्चाताप के द्वारा हमें पवित्र करने के लिए और हमें परमेश्वर की उपस्थिति में वापस जाने की अनुमति देने के लिए हम उन्हें प्रेम करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमसे पहले प्रेम किया। यीशु ने कहा, परंतु ढाढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। बाद में उन्होंने शामिल किया, मैं भी चाहता हूँ कि तुम संसार को जीत लो। संसार पर विजय पाना जीवन काल का एक परिभाषित क्षण नहीं है, परंतु जीवन काल के क्षणों का जो अनंत की ही परिभाषा है। इसकी शुरुआत तब हो सकती है जब एक बच्चा प्रार्थना करने सीखता है और विनीत होकर गाता है। यह निरंतर जारी रहता है, जैसे कि एक व्यक्ति उद्धारकर्ता के जीवन का एक नया नियम से अध्ययन करता है और मार्मन की पुस्तक से उद्धारकर्ता के बलिदान की शक्ति का विचार करता है। प्रार्थना, पश्चाताप, उद्धारकर्ता का अनुसरण करना और उनके अनुग्रह को प्राप्त करने से हमें समझ आता है कि यह हम यहाँ क्यों हैं और हम क्या बन सकते हैं। आलमा इसका विवरण करते हैं, उनके हृदय में भी एक महान परिवर्तन हुआ था और उन्होंने स्वयं को विनम्र किया और सच्चे और जीवित परमेश्वर में अपना विश्वास बनाए। वे अंत तक विश्वास रखें। जो संसार पर विजय पा रहे हैं वह जानते हैं कि वह अपने स्वर्गीय पिता के प्रति जवाबदेह होंगे। ईमानदारी से बलिदान बदलना और अपने पापों से पश्चाताप करना अब सीमित नहीं रहा, परंतु सभी स्वाधीन है। जैसे पाप लाल रंग के होते हैं, हम की तरह उजले। संसार को एक अनंत भविष्य को देखने में कठिनाई होती है, जैसे कि एक बच्चा पार्टियां करने में आनंद लेता है। जब वे घर से बाहर होते हैं, हंगामों का आनंद लेते हुए उन परिणामों के विषय में ना सोचते हुए जो माता पिता के 24 घंटों में आने के बाद होंगे। संसार पर विजय पाना एक वैश्विक आक्रमण नहीं है, परंतु एक निजी व्यक्तिगत लड़ाई है, जिसकी हमें अपने आंतरिक दुश्मनों से हाथों हाथ निपटने की आवश्यकता होती है। संसार अधिकतर
प्राकृतिक मनुष्यों को जीतने के बजाय लिप्त करने में रुचि रखता है। वह जो संसार पर विजय प्राप्त कर रहे हैं वे विस्तार से इस महान आज्ञा को संजोए रखते हैं। मुझे तुम्हारा इतना समय और इतना अधिक पैसा और इतना अधिक कार्य नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। संसार पर विजय पाना, परमेश्वर के प्रति हमारे वादों को बनाए रखना, हमारा बपतिस्मा, उनके पवित्र घरों में हमारे अनुबंध और हमारे अनंत साथी के प्रति सच्चाई की शपथ रखना, संसार पर विजय पाने से हमारा मार्गदर्शन विनम्रता से, प्रत्येक सप्ताह प्रभु भोज की मेज पर क्षमा मांगने और प्रतिज्ञा लेने की कि हम हमेशा उन्हें याद रखेंगे और उनके आज्ञाओं का पालन करेंगे ताकि हमारे साथ उनकी आत्मा सदा रहे। हमारा प्रेम शब्द सब्बात के दिन के लिए तब समाप्त नहीं होता जब गिरजाघर के द्वारे हमारे पीछे बंद हो जाते हैं, लेकिन इसके स्थान पर यह द्वार खुलता है कि सुंदर दिन आराम करने का, पढ़ने का, प्रार्थना और अपने परिवार और दूसरों तक पहुंचने का, जिन्हें हमारे ध्यान की आवश्यकता है, बजाय इसके राहत की सांस लेने में कि गिरजाघर खत्म हो गया और फुटबॉल का खेल शुरू होने से पहले जल्द ही टेलीविजन को खोजा जाए। संसार पर विजय पाना एक आवाज भी भरोसा करना और जो चेतावनी, आराम, आश्वासन, प्रकाश और शांति देता जो कि संसार नहीं देता। संसार पर विजय पाने का मतलब है अपने आप को बाहर की ओर पलटें। दूसरी आज्ञा को याद रखते हुए तुम में से जो सबसे बड़ा होगा वह तुम्हारा दास होगा। हमारे जीवन साथी की खुशी हमारे मनोरंजन से अधिक आवश्यक होती है। अपने बच्चों को परमेश्वर के प्रेम में मजबूत बनाना का मदद करना और उनकी आज्ञाओं को रखने की इच्छा हमारी प्राथमिकता है। अपने आत्मिक अटेन्ना स्वर्ग की ओर संकेत करते हुए प्रभु हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जब हम मन से अपनी संसारिक आशीषों को दसवां अंश उपवास की भेंट और जिन्हें आवश्यकता है उन्हें देते हैं। संसार अपने चारों ओर ब्रह्मांड बनाता है दूसरों से अधिक पाने का गर्व लेते हुए। देखो मेरा क्या है, मेरी पड़ोसी की तुलना में मुझे देखो, देखो मैं कितना महत्वपूर्ण हूँ। संसार आसानी से चिड़ा, अपशपाती मानोगे से भरा और भीड़ की जय जयकार को प्रेम करता है। संसार पर विजय पाने का हमेशा यह मतलब होगा कि हमारे कुछ ऐसे विचार होंगे जिनका संसार हंसी उड़ाएगा, उद्धारकर्ता ने कहा। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो जान लो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है। यदि आप संसार के होते हो तो संसार अपनों से प्रीति रखता है। अध्यक्ष थॉमस एस मानसून ने कहा कि यह लगभग अनिवार्य है कि हमारे विश्वास की चुनौती दी जाएगी। क्या हमारे पास हमारे विश्वास के लिए दृढ़ खड़े रहने का नैतिक साहस है? भले ही ऐसा करने से हमें अकेला ही खड़ा होना पड़े, मसीह का शिष्य चिंतित नहीं होगा। यदि उसके विचार को फेसबुक पर 10,000 पसंद नहीं मिलते, संसार पर विजय पाने से परमेश्वर हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, जैसे कि हम उनके जीवित भविष्य वक्ताओं और प्रेरितों के मार्गदर्शन पर ध्यान देते हैं। जब अतिरिक्त लालच का या व्याकुलता का सामना करना पड़ता है तो यह संसार उसकी निंदा करता है जो कभी वफादार हुआ करता था और उसके भूतपूर्व बहुमूल्य आत्मिक अनुभवों को रद्द करता है, उनके अस्पृष्टता कल्पनाएं या मूर्खतापूर्ण धोखे बताता है। उन क्षणों में हम जब अकेलापन या निराशा को महसूस करते हैं, संसार पर विजय पाना उसे याद करना है। जब हमने उद्धारकर्ता के प्रेम को महसूस किया, एल्डर नील एंड मैक्सवेल ने उनमें से एक अनुभव का कुछ इस प्रकार से विवरण दिया। मैं आशीषित था और मैं जानता कि परमेश्वर जानता है कि मैं यह जानता हूँ। मैं आशीषित था। I had been blessed, and I knew that God knew
that I knew I had been blessed. Although we may temporarily feel forgotten, we do not forget.
संसार पर विजय पाने का अर्थ यह नहीं है कि हमने एकांत जीवन जिया है, सुरक्षित अनौचित्य से और इस जीवन की मुश्किलों से, किंतु यह विश्वास का एक अधिक विस्तृत रूप खोलता है, हमें उद्धारकर्ता और अनंत जीवन के वादे की ओर ले जाने का। यद्यपि परिपूर्णता इस जीवन में पूरी नहीं है, संसार पर विजय पाना हमारी आशा की लपटों को ऊपर रखता है कि एक दिन मैं उसके सम्मुख खड़ा होऊंगा, तब मैं उसके चेहरे को आनंद से देखूंगा और उनकी आवाज को सुनूंगा, और आओ मेरे पिता के धन्य लोगों, उस राज्य के अधिकारों हो जाओ और जगत के आदि के लिए आदि ने तुम्हारे लिए तैयार किया है। वह 64 इयर्स के थे। मैं पहली बार ब्रूस से तब मिला जब हम बिघम यंग यूनिवर्सिटी के छात्र थे। वह वहाँ के सबसे अच्छे और तीव्र बुद्धि थे। यह कोई अचंभा नहीं था कि कुछ वर्ष बाद उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से राजनीति विज्ञान में चिकित्सक की डिग्री प्राप्त हुई। रूसी के प्रशासन को जोर देते हुए उन्हें रूसी लोगों से प्रेम था और वह रूसी सहजता से बोलते थे। ब्रूस संसार की ओर आसानी से खींच सकते थे, परंतु उनकी निष्ठा उद्धारकर्ता यीशु मसीह, उनके अनंत साथी सूसन और अपने बच्चों और नाती पोतों के साथ थे। ब्रूस 1995 में ब्रूस को जनरल अधिकारी की बुलाहट दी गई। हमने फ्रैंकफर्ट जर्मनी में एक साथ अपने परिवारों की सेवा की। 20 वर्षों की उनकी 70 की सेवा के दौरान ब्रूस को कई बार अस्पतालों में भर्ती करना पड़ा और उनकी 10 शल्य चिकित्सा हुई। डॉक्टरों ने सूसन को 2 अवसरों पर कहा कि ब्रूस रात के बाद नहीं जिएंगे, परंतु वह जिए। अपनी जनरल अध्यक्षता की सेवा में ब्रूस डायलिसिस पर अपना रक्त साफ करने के लिए 12 वर्ष से अधिक रहे। उस समय अधिकतर डायलिसिस हर इलाज का हफ्ते में 5 दिन 4 घंटे के लिए होता, ताकि वह अपनी सेवा की बुलाहट दिन में कर सकें और सम्मेलन का कार्य सप्ताह के अंतिम दिन। कई पुरोहित आशीषों के बाद जब उनकी सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ, ब्रूस उलझन में थे, परंतु वह जानते थे कि उन्हें किसमें विश्वास करना है। 2010 में ब्रूस को अपने पुत्र डेविड के एक गुर्दा मिला। इस बार उनके शरीर में ट्रांसप्लांट से इनकार नहीं किया। यह चमत्कार था, एक नए सिरे से स्वास्थ्य को लाना। आखिरकार उन्हें और सूसन को अपने प्रिय रूस की एरिया अध्यक्षता में वापस जाने की अनुमति मिली। दिसंबर 26, 2016 को निरंतर इन्फेक्शन से लड़ते सॉल्ट लेक सिटी के अस्पताल में उन्होंने डॉक्टर को कमरा छोड़ने के लिए कहा। ब्रूस ने सूसन से कहा, वह आत्मा के द्वारा जानते थे कि डॉक्टर उनके जीवन को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। वह जानते थे कि वह प्रभु के हाथों में थे और उन्हें स्वर्गीय पिता घर ले जाएंगे। वह शांति से पूर्ण थे। दिसंबर 28 को ब्रूस घर गए। कुछ घंटों के बाद अपने परिवार से घिरे, वह शांति से अपने स्वर्गीय घर पर वापस चले गए। वर्ष पूर्व ब्रूस डगलस पॉटर ने अपने बच्चों को अपने उद्धारकर्ता की और प्रेम के विषय में लिखा था। उन्होंने कहा, भाग में मेरे पास यीशु मसीह की वास्तविकता और प्रेम है, जो मेरे जीवन का दिशा सूचक यंत्र रही है। एक पवित्र आत्मा की प्रज्वलित गवाही है कि वह जीवित है। वह आवश्यकता के हर समय में मेरा मुक्तिदाता और मित्र है। हमारी चुनौती उन्हें जानने की है और उनमें इस विश्वास के द्वारा इस संसार के परीक्षणों और लालच पर विजय। हम विश्वासी और सच्चे हैं उनमें विश्वास करके। ब्रूस डगलर पॉटर ने संसार पर विजय प्राप्त की। हम सब दृढ़ता से अपने प्रयासों में संसार पर विजय होने की कोशिश करें। गंभीर अपराधों को ना माफ करते हुए फिर भी धैर्य से कुछ हल्की फिसलन और गिरने के साथ बेसब्री से अपनी गति को बढ़ाते हुए और दूसरों की उद्धारता से मदद करते हुए, जैसे कि आप उद्धारकर्ता पर पूर्णता से और विश्वास करते हैं, मैं आपसे इस जीवन में अधिक से अधिक शांति की आशीष का वादा करता हूं और एक से अधिक आश्वासन करके अनंत नियति की, यीशु मसीह के नाम में आमेन।
हम उन सबों के आभारी हैं जिन्होंने आज दोपहर हमारा संबोधन किया और सुंदर संगीत का भी जो उपलब्ध कराया गया। हम भाइयों को जनरल पौरोहित्य सभा को याद दिलाते हैं जो आज शाम 6 बजे सम्मेलन केंद्र में माउंटेन डेलाइट टाइम समय से होगी। मॉर्मन गायक मंडली का राष्ट्रीय प्रसारण कल प्रातः 9:30 से 10 बजे होगा। महासम्मेलन का रविवार प्रातकालीन सत्र इसके तुरंत बाद आरंभ होगा। इस सत्र के समापन वक्ता 12 प्रेरितों के परिषद के एल्डर एम रसल बैलर्ड होंगे। उनके पश्चात गायक मंडली इस सभा का समापन अ चाइल्ड्स प्रेयर गाकर करेगी। फिर समापन प्रार्थना 70 के एल्डर होगो मोंटोया द्वारा दी जाएगी।
और बहनों, अब ये मेरा काम है आपसे बोलने का और आपका काम है सुनने का। मेरा उद्देश्य मेरे काम को खत्म करने का, इससे पहले आप अपना काम खत्म करें। मैं अपना अच्छा दूंगा। सालों पहले मैंने देखा है कि उनको जो इस दुनिया में बहुत कुछ पा लेते हैं, वो जो अपना जीवन सपनों के साथ जीते हैं, उद्देश्यों को रख अपने सपनों पर ध्यान देना और सुनियोजित योजना की कैसे उसे पा लेना है, जानते हुए आप कहां जा रहे हैं और कैसे आप वहां पहुंचना चाहेंगे, का मतलब उद्देश्य और जीवन की उपलब्धि ला सकता है। कुछ को एक उद्देश्य और एक योजना के बीच में फर्क करने में मुश्किल होती है, जब तक वे सीख न लें कि एक उद्देश्य एक लक्ष्य और एक अंत, जबकि योजना एक रास्ता जिसके द्वारा आप वहां पहुंचते हैं। उदाहरण के लिए, हमारे पास एक उद्देश्य एक अनजाने स्थान की ओर ले जाता है, और जैसे कुछ आप उदाहरण के लिए हमारे पास प्यारी बहनें जानती हैं, हम पुरुष अक्सर सोचते हैं हम जानते हैं वहां कैसे पहुंचना है। अक्सर परिणाम हमारे कहने में होता है, मैं जानता हूं, ये लगभग अगले ही मोड़ पर होगा, मेरी पत्नी मुस्कुरा रही हैं। उद्देश्य साफ था, लेकिन वहां लक्ष्य के स्थान पर पहुंचने की योजना अच्छी नहीं थी। उद्देश्य व्यवस्था शुरुआत के साथ अंत मन में करना जरूरी है, और योजना करने का एक उपाय है उस अंत तक जाना। आनंद की एक कुंजी की समझ गंतव्य में क्या छिपा है, और तब अपना समय, प्रयास और चीजों पर ध्यान देना कि वहां पर पहुंचने का वास्तविक रास्ते पर व्यतीत करें। परमेश्वर हमारे स्वर्गीय पिता हमें संपूर्ण उदाहरण, उद्देश्य और योजना देता है। उनका उद्देश्य मनुष्य को अंत जीवन और अमृत प्रदान करना है, उसका अर्थ उसे उद्धार की योजना में लाना है। हमारे प्रिय स्वर्गीय पिता की योजना में हमें देने के लिए बहुत कुछ शामिल है, जैसे बढ़ना, सीखना, भौतिक नश्वरता, जिससे हम और अधिक उसकी तरह बन सकते हैं। हमारे भौतिक शरीर में अनंत आत्माओं के कपड़े पहनना, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा और आज्ञाओं के द्वारा जीना है, और हमें अनंत परिवार बनाने की अनुमति उद्धारकर्ता के प्रायश्चित के द्वारा अमृत और अनंत जीवन उसके बच्चों के लिए, उसके साथ उसके सेलेस्टियल राज्य में रहना परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करता है। ज्ञान पूर्ण उद्देश्य को बनाने में समझदारी शामिल है। वो ही थोड़े समय का उद्देश्य ही सिर्फ प्रभावकारी है। यदि वे लंबे समय के उद्देश्य को सफाई से समझकर बढ़े तो मैं विश्वास करता हूं कि आनंद की एक महत्वपूर्ण कुंजी ये सीखना है कि कैसे अपने स्वयं के उद्देश्यों को बनाना और अपने स्वयं की योजना को हमारे स्वर्गीय पिता की अनंत योजना में ढालना है। यदि हम इस अनंत रास्ते पर ध्यान दें, हम उसकी उपस्थिति में लौटने के लिए अनिवार्य रूप से योग्य होंगे। हमारे भविष्य के लिए उद्देश्य और योजनाएं, शिक्षा, यहाँ तक गोल्फ खेल अच्छे हैं कि और हमारे विवाह के लिए, हमारे परिवारों के लिए, हमारे गिरजा परिषदों और बुलाहटों के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये प्रचारकों के लिए वास्तव में आवश्यक है, लेकिन हमारे महान और ऊपर के उद्देश्य स्वर्गीय पिता की अनंत योजना में फिट होने चाहिए। यीशु कहते हैं, परंतु सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी महिमा को खोजो और ये सारी चीजें तुम्हें दी जाएंगी। माहिर लोगों ने हमें उद्देश्य बनाने पर बताया कि एक उद्देश्य साधारण और अति सीधा होना चाहिए, उतनी अधिक समर्थता उसमें होगी। जब हम एक उद्देश्य को एक कल्पना में काम करते हैं या एक या दो समर्थ और प्रतीक शब्दों में, वो उद्देश्य तब हमारा भाग और मार्गदर्शक बन सकता है। सब कुछ जो हम सोचते हैं और करते हैं, मैं विश्वास करता हूं कि ये प्रदोष शब्द है कि इस प्रतियोगिता में परमेश्वर के उद्देश्य का प्रतीक हमारे लिए और हमारा अति महत्वपूर्ण उद्देश्य हमारे लिए है। शब्द है लौटना और ग्रहण करना, उसकी उपस्थिति में लौटना और अनंत आशीषें पाना। वो आती हैं अनुबंधों को बनाने और पालन करने के अति महत्वपूर्ण उद्देश्य से। हम लौटते हैं और ग्रहण करते हैं प्रभु यीशु मसीह में अटल विश्वास के सहारे, पूर्ण रूप से उसके गुणों पर निर्भर होते हुए जो कि बचाने में पराक्रमी हैं। इसलिए तुम मसीह में दृढ़ता से विश्वास करते हुए आशा की परिपूर्ण चमक और परमेश्वर और सभी मनुष्य से प्रेम करते हुए हमेशा आगे बढ़ते हैं। मसीह की वाणी के लेते हुए अंत तक धीरज धरते हुए, लूसिफर ने हमारे पिता की योजना को ग्रहण नहीं किया था, जो हमें स्वीकृति देता है कि उसकी उपस्थिति में लौटने और उसकी आशीषों को पाने के लिए। असल में उसने पिता की योजना का विरोध कर पूरी तरह से बदलने की कोशिश कर महिमा, आदर और परमेश्वर की सामर्थ्य को स्वयं लेना चाहता था। परिणाम स्वरूप उसे परमेश्वर की उपस्थिति से उसके साथियों संग बाहर निकाल दिया गया था और शैतान हां यहां तक दुष्ट बन गया था। झूठों का पिता, मनुष्यों को अंधा कर देना, धोखा देना और अपनी इच्छा पर चलाकर कैद करना, यहां तक कि बहुत से प्रभु की आवाज को सुनते नहीं थे। उसके पहले के जीवन के चुनाव के कारण शैतान नहीं लौटा, न ही ग्रहण कर सका। सिर्फ उसके पास पिता की योजना का विरोध करना, जहां तक संभव हो सके प्रलोभन और लालच देकर हमें नीचे लाना और हमें अपने समान दुखित करता है। उसकी योजना, उसके घोर इरादों को प्रत्येक व्यक्तिगत, वंशज, सांस्कृतिक और समाज पर लागू कर पूरा करना है। शैतान कड़ी आवाज का प्रयोग करता है, आवाजें जो कि पवित्र आत्मा की धीमी शांत आवाज को दबाने की खोज करता है, जिसे हम सारी बातों में देख सकते हैं। हमें लौटने और ग्रहण करने के लिए चाहिए। ये आवाजें उनकी होती हैं जो सुसमाचार का निरादर करते हैं और जो इंटरनेट, सामाजिक और मीडिया, रेडियो, टेलीविजन और मूवी का प्रयोग कर अमरत्व की लड़ाई, भद्दी भाषा, गंदे मोहक लालच को पेश करते हैं, जो हमारा ध्यान कुछ इस तरह से हमारे उद्देश्य और योजना से हमारे पास अनंतता के लिए से भटकते हैं। इन आवाजों में व्यक्तिगत अच्छा इरादा ये भी शामिल है। वे जो मनुष्य की दुनियावी फिलॉसफी से अंधे हैं, और वो जो विश्वास को नाश करने की खोज करते हैं और अनंत ध्यान उन पर जो साधारणतया से परमेश्वर की उपस्थिति पर लौटने की कोशिश करते हैं, सब कुछ पाते हैं जो कि हमारे पिता के पास है। मैंने पाया है कि लौटने और ग्रहण करने के वादों पर ध्यान लगाए रहता हूँ। मुझे रोजाना समय निकालकर अपने आप से पूछने की आवश्यकता होती है, मैं कैसा कर रहा हूँ। ये इस तरह से है जैसे व्यक्तिगत गुप्त साक्षात्कार अपने आप से करना। और यदि ये कुछ अजीब लगे, उसके बारे में सोचे, कौन है इस संसार में जो आपके बारे में आपसे ज्यादा आपको जानता हो? आप अपने विचारों को जानते हैं, आपके गुप्त कार्य, आपकी इच्छाएं, आपके सपने, उद्देश्य और योजनाएं, और आप अपने आप को किसी और से बेहतर जानते हैं। कैसे आप प्रगति करते हैं और लौटने और ग्रहण करने के मार्ग पर चलते हैं? गाइड के रूप में मेरे लिए इस व्यक्तिगत और गुप्त रूप से समीक्षा करें। मैंने अल्मा के 5वां अध्याय के आत्मनिरीक्षक शब्दों को पढ़ा और चिंतन कर ग्रहण करना पसंद किया, जहां पर अल्मा पूछता है, क्या तुमने परमेश्वर की आत्मिक रूप से जन्म लिया है? क्या तुमने अपने चेहरों में उसके प्रतिबिंब को पाया है? क्या तुमने इस महान परिवर्तन को अपने हृदयों में अनुभव किया है? अल्मा के प्रश्न हमारे उद्देश्य और योजनाओं को दोहराकर इच्छा पूर्वक लौटना और ग्रहण करने का आदेशानुसार शामिल करते हैं। याद रखें, उद्धारकर्ता का निमंत्रण, हे सब परमेश्वर करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। जैसे हम प्रभु यीशु मसीह में हमारे विश्वास में बढ़ते हैं, समर्थ हमारी आत्मा के भीतर आराम, पापों की क्षमा देने के द्वारा अपूर्ण रिश्तेदारियों से मुक्त करता है, आत्मिक घाव को चंगा करता है जो कि प्रगति को दबाता है, और हमें मसीह के गुणों को बनाने में ताकत देता है और सक्षम करता है। हम प्रभु यीशु मसीह के प्रायश्चित के परिणाम के लिए अति गहराई से प्रोत्साहन करना होगा। आने वाले सप्ताह के दौरान समय निकालें, अपने जीवन के उद्देश्य और योजनाओं की समीक्षा करें और ध्यान दें, वे हमारे स्वर्गीय पिता के महान योजना हमारे आनंद से जुड़ी हो। यदि आपको पश्चाताप कर और बदलने की जरूरत है, तब ऐसा करने की सोचें, समय लें, प्रार्थना पूर्वक सोचें कि क्या करने की जरूरत है। आपकी एक साथ परमेश्वर की महिमा को रखने में मदद करें। हमें यीशु मसीह के सुसमाचार और सिद्धांत को हमारे उद्देश्यों और योजनाओं को केंद्रित कर रखना चाहिए। बिना उसके कोई अनंत उद्देश्य संभव नहीं होता, और हमारी योजनाएं हमारे अनंत उद्देश्यों को पाने में वास्तव में असफल रहती हैं। एक अतिरिक्त सहायता है जीवित मसीह, प्रेरितों की गवाही, जिसे गिरजा में January 1, 2000 में पेश किया गया था। एक कॉपी उस जगह पर रखें जहां आप उसे देख सकें, और समय लेकर हर एक पाए गए बयानों को दोहराएं जो इस प्रेरणा भरी मसीह की गवाही में पाए जाते हैं, उसके विशेष गवाहों द्वारा जिन्होंने उस पर हस्ताक्षर किए थे। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, उसका अध्ययन परिवार दुनिया को एक घोषणा के साथ करें। हम अक्सर परिवार घोषणा के बारे में बोलते हैं, लेकिन कृपया याद से उसको जीवित मसीह की बचाने वाली समर्थता की रोशनी में पढ़ें। जीवित मसीह के बिना हमारी प्यारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होंगी। जैसे परिवार घोषणा बताता है, परमेश्वर की योजना सच के लिए मृत्यु के बाद भी पारिवारिक संबंधों को कायम रखते हैं। पवित्र धर्म विधियां और अनुबंध जो पवित्र मंदिरों से उपलब्ध हैं, लोगों के लिए संभव कर देता है परमेश्वर की उपस्थिति में लौटने के लिए, और परिवारों को अनंत रूप से एकता में लौटाता है। ये सिर्फ जीवित मसीह के कारण उद्धारकर्ता के प्रायश्चित और संसार के मुक्तिदाता ही कर सकता है। इस संबंध में आप धर्म शास्त्रों को भी खोजकर अपनी समझ को जीवित मसीह में विशेष पाए जाने वाले सच में बढ़ा सकते हैं। प्रार्थना पूर्वक अध्ययन करना, जैसे जीवित मसीह की मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना और मार्मन की बुक के भविष्यवक्ताओं की गवाहियों का अध्ययन करना है। ये उद्धारकर्ता में विश्वास बढ़ाता है और आपका उस पर रुक कर ध्यान रखने में मदद करना, जैसे आप अपनी योजना का अनुसरण कर अपने अनंत उद्देश्य पर पहुंचते। हमारी गलतियों, शीघ्र गुस्सा करने, घुमावदार और पापों के बावजूद यीशु मसीह का प्रायश्चित हमें पश्चाताप करने की अनुमति देता, लौटने और ग्रहण करने की तैयारी कर के परमेश्वर की अतुल्य आशीषों की वादा करके पिता और पुत्र के साथ सेलेस्टियल राज्य की उच्चतम महिमा में सदा के लिए रहने के लिए करता है। अब जैसा आप सब जानते हैं, हम में से कोई भी मृत्यु से बच नहीं सकेगा, इसलिए हमारा लंबे समय का उद्देश्य और योजना ये है कि जब हम हमारे स्वर्गीय पिता की ओर लौटेंगे, हम पाएंगे वो सब कुछ जो उसने हम सब के लिए संयोजित कर रखा है। मैं गवाही देता हूँ कि नाश्वरता में कोई महान उद्देश्य नहीं है सिवाय हमारे स्वर्गीय अभिभावकों और प्यारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ अनंतना में रहना, लेकिन ये हमारी उद्देश्य से कहीं अधिक है, ये उसका भी उद्देश्य है। उनके पास हमारे लिए संपूर्ण प्रेम है, अति शक्तिशाली, हम जिसे समझ भी नहीं सकते। वे पूरी तरह से, पूर्णता से, अनंत पंक्ति में हमारे साथ हैं। हम उनके काम हैं, हमारी महिमा उनकी महिमा है। किसी चीज से ज्यादा वे हमें घर लाना चाहते हैं, उनकी उपस्थिति में अनंत आनंद से लौटना और ग्रहण करना चाहते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, एक सप्ताह में हम पाम रविवार मनाएंगे, मसीह का यरूशलेम में विजयी प्रवेश का पुण्य स्मरण करते हैं। दो सप्ताह में हम ईस्टर रविवार मनाएंगे, उद्धारकर्ता का मृत्यु पर विजय पाने का स्मरण करते हैं। जैसे हम उद्धारकर्ता पर इन दो विशेष रविवारों के दौरान ध्यान देते हैं, हमें उसे याद दिलाने दो और अपने जीवन भर की वचनबद्धता की, उसकी आज्ञाओं का जीवन भर पालन करेंगे का नवीनीकरण करते हैं। चलिए हम अपने जीवन में गहराई से देखें, अपने स्वयं के उद्देश्य बनाएं और परमेश्वर के साथ अपनी योजना पर ध्यान लगाते हुए कुछ इस तरह से वास्तव में हमारे लौटने और ग्रहण करने की कीमती सौभाग्य का मार्गदर्शन करते हैं, जो कि मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
Father, are you?
प्रिय स्वर्गीय पिता, हम आपके बहुत हमारे इस सत्र के इस कॉन्फ्रेंस के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। स्पेशल जो गीत हमारे लिए बताया गया, अब हम जानते हैं कि आप वहां पर हैं, हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। हम अध्यक्ष थॉमस एस मॉन्सन के लिए प्रार्थना करते हैं। हम बहुत आभारी हैं जो बहुत सेवाएं लोगों ने दी हैं, और स्त्री और पुरुषों ने जो आज जिनको सेवा मुक्त किया गया है, हम उनसे आपसे प्रार्थना करते हैं कि उन सबको आशीष दीजिए, उन लोगों को और मार्गदर्शकों को जो आज इसको नियुक्ति किए गए हैं। हम प्रार्थना करते हैं आपके बच्चों के लिए जो कष्टों से गुजर रहे हैं, उनमें से कुछ नेचुरल डिजास्टर्स जो प्राकृतिक आपदाएं उनके साथ हैं, परमेश्वर कुछ और प्रकार की समस्याएं उनके हैं जो आत्मिक संसार में रहते हैं, परमेश्वर वो आपके बच्चे हैं। हम उनके भाई और बहन हैं, कृपया हमारे हृदयों को परिवर्तन कीजिए ताकि हम उनके कष्टों को महसूस कर सकें। हम आपको प्रिय करते हैं परमेश्वर, हम आपके पुत्र से प्यार करते हैं, हम उनके कहना मानना चाहते हैं परमेश्वर, जैसे आपके प्रिय पुत्र हमारे आज्ञाकारी हैं। ये सब कुछ हम कहते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
ये अंतिम दिनों के संतों के यीशु मसीह के गिरजे का 187वां वार्षिक महासम्मेलन था। इसके वक्ता गिरजे के जनरल अधिकारियों और पदाधिकारियों में से चुने गए हैं। इस सत्र के लिए संगीत ट्रेमेंटन गार्लैंड और फील्डिंग की स्टेको के सदस्यों की मिली जुली परिवार गायक मंडली द्वारा उपलब्ध किया गया था। इसका प्रसारण बॉनेबल डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा सार्वजनिक सेवा के रूप में किया गया। बिना लिखित अनुमति के इस कार्यक्रम की नकल, रिकॉर्डिंग, प्रतिलेखन या अन्य उपयोग वर्जित है।